पंद्रहवा अनुभा ब्रैकेट में पतझड़ की आवाजें पृष्ठ संख्या 248। निरुपमा सेवती के इस उपन्यास की नायिका अनुभा सचमुच में एक आधुनिक नारी का, उसके स्वत्व और स्वाभिमान का, उसके संघर्ष और जीवट का प्रतिनिधित्व करती है। पैराग्राफ चेंज। अनुभा का जीवन अभाव में गुजरा है। 47 के लोमहर्षक दंगों की कहानियां उसने लोगों से सुनी है। तब वह कुछ महीनों की थी। उसका परिवार भी उन विभीषिकाओं में झुलस चुका है। पाकिस्तान से भागते हुए रास्ते में रेलगाड़ी के डब्बे में घुसकर आतताइयों ने सारे परिवार के सामने छोटी बहू के कपड़े और फिर उसके तन के चीथड़े चीथड़े करके उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया था। और प्रतिरोध करने वाले उसके पति के ब्रैकेट में अनुभा के भाई के पेट में चाकू घोंप दिया था। अनुभा की मानसिक स्थिति में यह अमानुषी दृश्य कहीं भीतर जमकर बैठ गया। हालांकि इसके बारे में उसने केवल सुना है, देखा नहीं। अनुभा की सगाई रमनेश से होती है, किंतु वेश्याओं के अड्डों वाले स्थान पर रहने के कारण उसकी यह सगाई टूट जाती है। पैराग्राफ चेंज। कुसुम अंसल के उपन्यास पुस्तक की मुक्ता की भांति अनुभा भी पढ़ाई के लिए खूब संघर्ष करती है। आर्थिक अभाव की स्थिति उसे अधिक पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। फिर भी उनकी अनवरत झिकझिक के बावजूद बीए में दाखिला ले लेती है। साथ ही वह टाइपिंग का कोर्स भी कर लेती है। पर घर परिवार की आर्थिक व्यवस्थाओं तथा पिता की दयनीय स्थिति को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अतः अधिक समय तक आत्मा को कष्ट न देते हुए कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर स्वयं को नौकरी में झोंक देती है। पर हिम्मत नहीं हारती, पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखती है। ऑफिस के बाद धीरेन वर्मा के कोमल प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसे कुछ राहत मिलती है, परंतु वे नौकरी छोड़कर व्यवसाय में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को थोड़े में संतोष नहीं होता। और आखिर नौकरी तो नौकरी है। उसके स्थान पर अनुभा का ही एक सहकार्यकार सीके पदोन्नत होकर आ जाता है। अनुभा अपने निवास स्थान की समस्या उसके सामने रखती है तो सी के उसे पीएस का पद ऑफर करता है, परंतु उसके साथ जो शर्तें थीं उसकी आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकती। प्रमोशन के लिए अपने अवसर को खुश करने हेतु होटल या पिकनिक आदि पर जाना उसके स्वाभिमान को स्वीकार्य नहीं। वह केवल अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है, जो हमारे देश के भ्रष्ट माहौल में कदाचित ही संभव नहीं। परिणाम यह होता है कि उसे जो प्रमोशन मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता। पैराग्राफ चेंज। अनुभव को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दो एक नौकरियां भी छोड़नी पड़ती हैं। लांछित परिवेश के कारण वह अपना घर भी छोड़ देती है और हॉस्टल में रहने लगती है। उसके स्तब्ध जीवन में धीरेन वर्मा का प्रेम ही एकमात्र मरुदीप्त है। वह धीरेन जो विवाहित है और जिससे विवाह कभी नहीं हो सकता, परंतु इससे अधिक की उसे चाहत भी नहीं। अपने जीवन में उसे अनेक कटु अनुभव होते हैं। वह देखती है प्लास्टिक वर्क्स के छोटे से कारोबार का मालिक अपनी स्टेनो को खींचकर जांग पर बिठा लेता है। इन कटु अनुभवों की भोक्ता अनुभव के मन में एक प्रश्न हमेशा उमड़ता घुमड़ता रहता है कि महिला के लिए नौकरी का अर्थ क्या आत्मसम्मान को तिलांजलि देना होता है। उसे दुख है कि क्यों व्यक्ति ने जीवन में उपभोक्ता प्रवृत्ति को प्रमुख बना लिया है। इस प्रवृत्ति के चलते पृष्ठ संख्या 249। जब अधिकारी कर्मचारी के संबंधों में लालच और बेचना, मांग और शरीर आ जाते हैं, तब इनके बीच योग्यता की क्या कीमत रह जाती है। नारी का मान सम्मान कहाँ रह पाता है। स्त्री की स्थिति तब और भी शोचनीय हो जाती है जब अपने किसी परिवारजन द्वारा वह पुरुष की कामाग्नि में सामिधा की भांति झोंक दी जाती है। 16वां अनारो ब्रैकेट में मंजुल भगत पृष्ठ संख्या 249। मंजुल भगत कृत उपन्यास अनारो राजधानी दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसमें बसने वाले दीनहीन सर्वहारा वर्ग के श्रमिकों के जीवन को चित्रित करता है। इस उपन्यास की प्रमुख नायिका है अनारो, जो एक संघर्षशील एवं परिस्थितियों से टकराने का साहस रखती है। वे यहाँ बसे मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन की हर लड़ाई को अपने आप झेलती है और कठिनाइयों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाती। अनारो बड़ी बड़ी कोठियों में काम करती है और अपने तथा अपने परिवार को, पति को भी पालती है। उसका पति अपाहिज है, निठल्ला शराबी और जुआरी है। वह अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करता है। ऐसे पिछड़े इलाकों में बेसहारा औरत को पुरुष के नाम पर एक छत्र चाहिए। अनारों का पति नंदलाल ऐसा ही एक छत्र है। इसके लिए ये स्त्रियां उनकी मार धौंस जूते चप्पल सब बर्दाश्त करती हैं। उनमें यह भावना काम करती है कि कुछ भी है अपना मर्द तो है। पैराग्राफ चेंज। अनारों का पति नंदलाल उसकी कमाई पर ऐश करता है। उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं। खाना उसे अच्छा चाहिए, शराब चाहिए, जुए के लिए पैसे चाहिए। अनारों को देखकर मुर्दा घर की मैना स्मृति में कौंध जाती है। उसका पति पोपट पति नहीं, पति का तर्क मात्र है। पर अनारों अपने पति पर अपना अधिकार भी चाहती है। वह उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन उसके पति का जब मन करता है वह कुछ दिनों के लिए भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है। पर अनारों विरोध नहीं करती। वह उसके 3 बच्चों को पालती है, परंतु अनारों से यह बर्दाश्त नहीं होता कि नंदलाल उसकी छाती पर कोई और औरत ले आए। एक बार वह ऐसा करता है तब वह डटकर उसका मुकाबला करती है। अंततः नंदलाल उस औरत को अलग रख देता है। पैराग्राफ चेंज। अनारों के चरित्र की ऊंचाई तो वहां लक्षित होती है जहां उसे मालूम होता है कि नंदलाल से उस औरत को एक लड़का हुआ है और वह औरत किसी और मर्द के साथ रह रही है। तब उसका मन नहीं मानता और वह अपने पति से पैदा हुए बच्चे को घर ले आने के लिए कहती है। अनारों में भी गोदान के होरी की भांति अपनी मर्यादा के लिए हैसियत से ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति मिलती है। लड़की की सगाई में काफ़ी कर्जा ले लेती है और फिर चुकाते चुकाते एकदम टूट जाती है, बीमार हो जाती है। दामाद द्वारा मंदिर में शादी करने से वह प्रसन्न नहीं होती। तब भी वह अपने सब रिश्तेदारों तथा मोहल्ले के लोगों को बुलवाकर दावत देती है। इस प्रकार उस पर और भी कर्जा बढ़ जाता है और उसमें वह ताजिंदगी पिसती रहती है। बस एक ही लालसा के लिए वह जीवन भर जीती रहती है कि इन्वर्टर कामापन कर्जा तो यों चुटकियों में उतर जाएगा, पर उसका मान उसकी कदर बनी रहेगी उसके मर्द की नज़र में। इन्वर्टर कामा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अनारो पृष्ठ संख्या 104। पैराग्राफ चेंज। अनारो अपनी पति के अत्याचार, दुर्भाग्य और गंदे वातावरण से लड़ती हुई अंत तक जूझती रहती है। अनारो एक दुखी और असहाय नारी है, पर उसका स्वाभिमान मरा नहीं है। परिस्थिति की हीनता या व्यवस्था के कारण उसके चरित्र पर कोई आंच नहीं आने देती। अनारो कई लोगों के यहाँ काम करने जाती है। लेखिका ने अनारो के जीवन के माध्यम से उनके जीवन की कुछ झलकियाँ भी दिखाई हैं, जिनसे उनके जीवन का खोखलापन भी व्यंजित हुआ है।